जी बिस्मिल्लाह करें, आप सवाल पूछें 22 से लेके
26
जी जी फरमाइए, सवाल आप शुरू करें डॉक्टर साहब।
जी पहला सवाल ये था कि ये जो उन्वान है कसरत का अजमाल, इस उन्वान की वजाहत कर दीजिए।
अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा जरूरी है कि आप इस बात को नोट कर लें, जब हम लौह कलम पढ़ रहे हैं तो आप हेडिंग्स पे तवज्जो ना दें। हेडिंग्स जो हैं, देखें हजूर कलंदर बाबौलिया ने लगातार एक तहरीर लिखवाई, ये तो आपको पता है ना, शुरू में लिखा हुआ है कि हजूर कलंदर बाबौलिया डिक्टेट करते थे और वो डिक्टेशन हजूर मुर्शिद करीम जो है वो उसको पेन डाउन कर लेते थे, कलम बंद कर लेते थे। बाद में इसको किताबी सूरत देने के लिए इसमें चैप्टर्स और हेडिंग्स बनाई गई ताकि आपका शऊर उसको मतलब टुकड़ों में समझने की आदत रखने की वजह से क्या करता है, तो उसको सहूलत देने के लिए इसके उन्वानात कायम किए गए। ठीक हो गया। अगर आप लौह कलम पढ़ते हुए ये हेडिंग्स को थोड़ा इग्नोर करके डायरेक्ट यानी के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रब्त नजर आएगा, ये बात याद रहेगी
जी सही,
यानी इसे आप जहन में रखें। अब आ जाएं लफ्ज कसरत का अजमाल, देखें पूरे पैराग्राफ में ये लफ्ज कहीं मौजूद नहीं है, यानी मानवी तौर पे इसका उन्वान मुतय्यन किया गया। मानवीयत क्या है कि कसरत किसे कहते हैं, उसका अजमाली बयान। कसरत का अजमाल का मतलब कि खलासा, यानी सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया इसके जवाब में जू का वास्ता जब पढ़ते हैं तो आखिरी बात जो समझ आती है वो जो 26वें सफ़े पे है वो मैं यहां से पढ़ के दिखा अर्ज कर देता हूं। जैसे इंसान एक सिमत में चला गया, जरा सा वक्फा गुजरा, उसने अपने एहसास में एक दबाव सा महसूस किया, फौरन एहसास के टुकड़े होते चले गए। ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं कि बातनी तौर पे, दाखली तौर पे जात जुज्वे लात अज्जा है। बातनी तौर पे हर एहसास भी जुज्वे ला तज्जा है, लेकिन खारजी तौर पे वो तकसीम हो जाता है। क्या हुआ कि वो खारजी तौर पे एहसास के टुकड़े होते गए, वो अब सोचने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, सूंघने लगा और छूने लगा, यानी एहसास अलग अलग हो गया। और ये एहसास भी जो शाहिद की हैसियत में सब कुछ कर रहा है, यानी शाहिद देखने वाला जो कुछ कर रहा है वो भी जुज़्वे ला तज्ज़ा है, और मुशाहिदे की हैसियत में जो शाहिद और मशहूद का दरमियानी वास्ता है वो भी जुज़्वे ला तज्ज़ा है। और फिर आखिर में क्या फरमाया, ये है कुन है एहसास और वहदत और कसरत की हकीकत। यानी दाखली तौर पे सब कुछ जुज़्वे ला तज्ज़ा है और खारजी तौर पे ये मुनकसिम होकर कसरत बन जाता है। तो ये समझ आ गया कि कसरत का अजमाल क्या है, कि चीज बाहर आकर अज्जा में तकसीम हो जाती है और कसरत कहलाती है, बातिन में ये वहदत कहलाती है और ये जुज़्वे ला तज्ज़ा की हैसियत रखती है। ठीक हो गया जी?
जी सर, मेरा भी यही सवाल था कि जब वहदत में हिस एक होती है, बाहर आके हिस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, देखना सुनना
हाँ जी
बोलना अलग अलग हो जाते
हैं। जी 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 जी, देखें जब आप सो जाते हैं, आप इसकी मिसाल पे गौर करें, जब हम सोए होते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, कान अगरचे अंदर से खुले होते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। इसी तरह आपके हाथ पड़े हैं, नाक खुला है, ना आपको खुशबू आती है, ना आपको कोई चीज का जायका आता है। आप ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं कुछ खा रहा हूं, आप कोई फल पकड़ के उसकी, मतलब आप सेब पकड़ा तो उसका वजन, उसकी गोलाई, उसकी जसामत फील कर रहे हैं ना। अब आप ख्वाब में देख रहे हैं मैं खा रहा हूं, आपको उसका जायका भी आ रहा है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन आपके आजा पे सकूत तारी है। क्या मतलब हुआ कि आप अंदर में ये सारे हवास एक नुक्ते में बंद हैं और वहीं पे सारे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो फल नहीं है। सची मुची कोई फल है ख्वाब में? कोई सचमुच फल है आपके हाथ में? असल में वो एहसास का नाम है। क्या कहा? एहसास। असल में एक चीज है एहसास, इसी एहसास के लिए आपको आरास्ता किया गया हवास से। हवास की मदद से हम किसी चीज का एहसास करते हैं, वो हवास, इसमें कोई दुश्वार नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों ये सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही कि इनर में ये सारे हवास एक साथ काम कर रहे हैं और बाहर ये आजा में तकसीम हुए हुए। ठीक हो गया
जी सर? समझ आ गई सर। यानी हाथ का काम महसूस करना, जुबान का चखना
जी,
और दिमाग का सोचना, और वहां पे सब हिस्स एक है जी।
समझ आ गई। अब क्लियर हो गई बात
जी?
अब देखे ना, ये कसरत के अजमाल का इस पैराग्राफ का आखिरी जुमला क्या है? कोई सूरत साल हा साल बाद भी जब किसी फर्द की आंखों के सामने अपने खदो खाल में आती है तो वो उसको अमरे रब्बी रूह या जुज्वे लातजा या इंसान का नाम लेकर बेसाख्ता पुकार उठता है, मैं तुझे खूब पहचानता हूं, तू जैद है, तू महमूद है। क्या मतलब हुआ कि ये सारी शक्लें सूरतें हमारे इनर में महफूज हैं, बाहर ये बिखरी हुई हैं। जब वो सामने आती हैं तो अंदर की सूरत उसकी तस्दीक करती है। ठीक हो गया
जी सर?
जी जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल है कि ये जो बातिन में तस्वीर कशी अल्लाह ताला जितने मुसव्वरी करती है, इसका इल्म किसी को नहीं है, और अल्लाह ताला के इरादे ने हर तस्वीर को इदराक का हिस्सा बना दिया, हर फल के इदराक का हिस्सा बना दिया।
जी हाँ।
ये दोनों जुमले कैसे होंगे एक साथ?
अब इसकी मिसाल मैं आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की अर्ज कर देता हूँ। ये आपके फोन में सारे नंबर महफूज हैं, आपका फोन जो है वो लहरों के जरिए टावर से और टावर के जरिए सर्वर से कायम है, और आगे सर्वर पूरी दुनिया में फैले हुए टावर्स के साथ इसका कनेक्शन है। आपने अमेरिका भी बात की, आपने दुबई भी बात की, आपने कनाडा भी बात की, आपने ऑस्ट्रेलिया भी बात की, आपने यूरोप में इंग्लैंड में भी बात की। अब ये बात हम कैसे करते हैं? इस मोबाइल के अंदर एक चिप लगी हुई है, एक सिम पड़ी हुई है, वो सिम आपको एक्सेस देती है आपके मतलूबा नंबरों की लहरों तक। हाँ या नहीं? अगर नंबर आपके पास ना हो तो आप रابطہ कर सकते हैं? बैने ही ये सारा निजाम आपके अंदर है, सिर्फ नंबर नहीं पता, लिहाजा आप डायल नहीं कर पाते। लेकिन जब कभी तफाकन वो डायल हो जाए, क्या होता है, वो तस्वीर सामने आ जाती है। लाशऊर में ये सारी चीजें मौजूद हैं, शऊर को लाशऊर को रीड करना नहीं आता, उससे राबता करना नहीं आ रहा। ये सारी किताब असल में बुनियादी तौर पे इसलिए है कि आपका शऊर इस काबिल हो जाए कि किसी तरह आपका लाशऊर से राबता हो जाए और आप अपने डिजायर्ड नंबर पे कॉल थ्रू करवा सके। ये है सारा निजाम। अब तो देखे ना, इस जदीद टेक्नोलॉजी ने बात को समझना आसान कर दिया। ये जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ये उस बंदे के अंदर से थॉट ही आया ना उसको कि ऐसा हो सकता है। जब ग्राहम बेल ने कहा कि जी मैं अपनी आवाज को तारों के जरिए दूसरी जगह पहुंचा सकता हूं, तो एक और ने सोचा कि मैं बगैर तारों के अपनी आवाज दूसरी जगह पहुंचाऊं, तो ये सेलुलर फोन बन गए। क्या हुआ? एक ही ख्याल को मुख्तलिफ लोगों ने मिलके परवान चढ़ाया। अब सिस्टम तकरीबन वही है, तकरीबन, पूरी तरह वो नहीं है। वहां तो मादी वसीले की भी जरूरत नहीं, वहां तो ये मोबाइल नहीं चाहिए। आपके अंदर दिमाग में सब कुछ फिट है, जहन जो है उनसे, दिमाग के अंदर फिट चिपों से सेल्स जो हैं उनसे कैसे काम लेता है, ये आपके जहन की सलाहियतों पे मुनसर है। जहन की सलाहियतें रूह की ताबे हैं, रूह की एनर्जी से चलती हैं, और रूह से काम लेने वाली चीज को, हस्ती को जात कहते हैं। जात जिसको आप लफ्ज मैं से पुकारते हैं, मैंने कहा, मैंने सुना। ये मैं कौन है जो सुनवार है, मैं कौन है जो बुलवार है, या बल्फाज़े दीगर आपके अंदर से बोल रहा है। नतीजे में आपके आजा, उजलात, जबान, जबड़ा और ये जो फेरिंक्स यानी के हवा की नाली और उसके अंदर वोकल कॉर्ड, ये सारे एक साथ काम करते हैं तो अल्फाज बनते हैं। बहन ने इसी तरह जहन की सलाहियतों से काम लेने का जब हुनर आ जाता है, जब गुर आ जाता है, जब बंदे को ये तरीका आ जाता है, तो वो अपने इनर की तस्वीरों तक रसाई हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया?
सवाल है कि एक जर्रे की हरकत को दूसरे जर्रे की हरकत के साथ मुलहित देखना
जी,
जो इल्हाक है, यही सलात है?
नहीं 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 नहीं, देखें सलात जो है वो तालक का कयाम है। मैंने अर्ज किया कि मखलूक का खालिक से रब, खालिक का मखलूक से रब, और मखलूक का मखलूक से रब, ठीक है। ये है सलात के तीन जाविये या तीन जहते। खालिक का मखलूक से ताल्लुक क्या है, मखलूक का होना खालिक से ताल्लुक की अलामत है। आपका दिल धड़क रहा है, आपका सांस चल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, ये जो डायफ्राम की हरकत है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी आंतों का फेल, ये सारा रब का ताल्लुक मखलूक से होने की वजह से, वो ताल्लुक तो अपनी जगह कायम है। अब मखलूक अगर खालिक से अपना ताल्लुक कायम करना चाहती है तो वो अल्लाह के इस ताल्लुक की तरफ मतवज्जो होगी तो ताल्लुक कायम होगा ना। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, अगर आपके वालदा आपको आवाज दें और आप मतवज्जो ना हो तो वो आवाजें देते रहेंगे, आपको परवाह नहीं, आप अपने खेल में लगे हुए। लेकिन अगर आप ताबेदार सईद बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो वालदा एक दफा पुकारेगी, आप मतवज्जो भी होंगे और चलकर या दौड़कर उसकी तरफ जाएंगे, हाँ या नहीं। ये है ताल्लुक। अब दो चीजों का आपस में कनेक्शन क्या है, इसको इल्हाक कहा। मसलन पौधे का और हवा का क्या ताल्लुक है? हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को दरकार है, तो ये एक जर्रे की हरकत को दूसरे जर्रे की हरकत से मुलहिक देखना हुआ। क्या? कि पौधे के रंग का क्या ताल्लुक है मक्खी मच्छर या भंवरे से, तितली से? रंग का ताल्लुक क्या है? वो अट्रैक्ट करने का जरिया है किसको? भंवरे को, तितली को, शहद की मक्खी को। पता चल जाता है कि वो फूल है, वो सुर्ख रंग जो है वो किसी फूल का हो सकता है, वो करीब आती है फिर उसकी खुशबू उसको पता देती है कि मैं यहाँ हूँ, वो उसकी खुशबू से मशहूर होकर उस तक पहुँचता है और उसका उसे पता है जहाँ ये खुशबू आएगी वहाँ उसे रस मिलेगा, नेक्टर। अंग्रेजी में इस फूल के रस के लिए लफ्ज है नेक्टर, वो रस पी। अब ये सारी क्या है, अब फूल का मक्खी भंवरे या शहद की मक्खी या भंवरे या तितली से क्या ताल्लुक है, ये दोनों का आपस में क्या इलहाक है, इसको इलहाक कहेंगे। सलात जो है वो आपका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है, अल्लाह का आपसे कैसा है, और मखलूक का आपस में ताल्लुक कितना है। मसलन बच्चे का माँ से ताल्लुक, बच्चे का बाप से ताल्लुक, माँ बाप का बच्चे से ताल्लुक, ये सब सलात के मानों में आते हैं। अल्लाह ने कहा अकीमु सलात, यानी सारे ताल्लुकात को कायम रखना है। वासे हो गई बात, सलात और इल्हाक समझ आ गया। चलें तो आप बता दीजिए कि आप, आपको समझ आ गया
जी सर। जी सर उनका दूसरा तीसरा सवाल ये था खला क्या है और क्या ये शक्ल रखती है।
जवाब है जी हाँ, खला एक वजूद रखता है लेकिन चूंकि उसके अंदर कोई चीज नहीं है हम उसको खला कह रहे हैं, जैसे बुलबुला जैसे गुब्बारा। अब गुब्बारा क्या है, एक खिला है, नहीं हम कहते हैं इसके अंदर हवा भरी हुई है। इसी तरह खिला जो है वो एक वजूद है जिसमें इत्तलात भरी जाती हैं। अब गुलाब एक खिला है, उसके अंदर गुलाब की इत्तलात यानी गुलाब के तसव्वुरात भर दिए गए तो गुलाब कहलाया। इंसान के अंदर इंसान भी एक खिला है, हीन का मतलब ही खिला है। ये बात हजरत कलंदर बाब औलिया ने फरमाई है, इसी किताब में आगे चल के आएगी कि हीन कहते ही खिला को हैं। खिला में जो इत्तलात भर गई उसकी वजह से कोई जैद बन गया, कोई उमर बन गया, कोई बकर बन गया। जैसे कोई दरख्त अमरूद बन गया, ये कोई आम बन गया, ये सारे खिला हैं। खिला के अंदर जो इत्तलात भर गई वो उनका मजहर बन गया, उनका उन इत्तलात का इजहार उसकी शक्लो सूरत में उसकी डायमेंशंस में होना शुरू हो गया। ठीक हो गया
जी सर।
जी हाँ, एहसास का ठहराव है, एहसास का वकूफ यानी कि आप रुक गए। जब आपकी जात किसी चीज का मुशाहिदा करने के लिए वकूफ हासिल करती है उस दौरानिए को वक्फा कहा गया। वक्फे का मतलब वकफ से है ना, वकफ मैंने रुकना, इसी से लफ्ज औकाफ है। ये कुरान में औकाफ आते हैं ना, यानी रुकने की जगह। वकफ का मतलब है रुकना, वकूफ का मतलब है जब जहन किसी चीज पे रुक जाता है तो उसको समझता है। जब हम नहीं रुकते तो वकूफ हासिल नहीं होता, तेजी से वहां से गुजर जाते हैं। इसी से लफ्ज बेवकूफ है, यानी कि यह इसे वकूफ नहीं है, ये ठहर नहीं सकता, हिलता है। ठीक हो गया
जी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, इरशाद कलाम पाक में हजला वा के मुस्तलात व अतु ज़कात।
जी जी,
तो ये ज़कात का मतलब क्या है?
ज़कात का लफ्जी तर्जमा अगर आप करें ना इस लफ्ज को डिक्शनरी में देखें तो ये नशो नुमा के लिए आता है, ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए। अल्लाह कहता है अकीमु सलात व आतु ज़कात का असल मफहूम या रूहानी मफहूम यह है कि अपने ताल्लुकात को कायम रखो। ये कानून सुन लें, अरबी कायदा यह है जब किसी लफ्ज के आखिर में वाओ आ जाए ना, जैसे अकीमु यानी करो, आतु ज़का यानी के आतु खुद को डेवलप दो, अताक आतु दो क्या जका, जका किसे कहते हैं, कद अफलहा मन तज़क्का। ये दूसरी आयत को मिला के अब तज़क्का के लफ्ज को यहां देखें तो यहां पे आपने इसका तर्जमा जकात वो क्यों नहीं किया जो मारूफ है, कद अफलहा मन तज़क्का फलाह पाई उसने जिसने खुद को संवारा यानी ग्रो किया, यानी अफलाह कहते हैं हल चलाने को, फलाह कहते हैं जब आदमी को काम मिल जाए। हमारे यहां काम मिलने को कामयाबी कहा गया, काम मिला नहीं कामयाबी कहां से आ जाएगी, काम मिलना कामयाबी यानी काम मिल गया, लफ्जी तर्जमा कामयाबी का क्या है, मुझे काम मिल गया, कामयाब हो गया यानी याब मैंने पाना, उसे काम पा लिया, उसने काम को पा लिया। हमारे चूंकि शौरी निजाम में जो अल्फाज के मीनिंग्स हैं, मैंने क्या अर्ज किया कि शऊर की हदों से बाहर निकल के पहले तो हमें इल्हाम को समझना है, इल्हाम के बाद अगली बारी आएगी वही की, यानी अगला दर्जा वही का है। तो ये किताब चूंकि इल्हामी तर्जों में लिखी गई है इसलिए आपको पहले तो अपने शौरी जोन से थोड़ा सा ऊपर उठना है। जब तक आप अपने शौर को इससे टैली करते रहेंगे आप उलझते रहेंगे। इसमें आगे चल के हजूर कलंदर बाबौलिया ने इस बात को वाजे किया कि अकीमु सलात व आतु ज़कात एक पूरा प्रोग्राम है। अब उन्होंने किन अल्फाज में उसकी शरह की है वो वहां पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको खलासा तन अर्ज कर दिया कि अल्लाह रब्बे करीम असल में ये फरमा रहे हैं कि आपको अपने ताल्लुकात को कायम रखना है और खुद को डेवलप करना है। हमारे यहां इसका जो भी मफहूम है शरीयत में कि आपने 2.5 रुपए दे के माल की सफाई की वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। देखे ना, एक चीज है शरीयत, एक चीज है तरीकत, एक चीज है मार्फत और फिर एक चीज है हकीकत। हमने शरीयत को अमली जिंदगी में जैसा तैसा, शरीयत शऊर के लिए होती है, वो कवानीन जो शऊर को गाइड करते हैं ये उनके लिए है। जब आप इसके इंट्रिंसिक मीनिंग्स यानी उसकी रूह को समझना चाहते हैं तो क्या होता है, ये डेवलपमेंट के लिए आता है, अपनी ग्रोथ के लिए आएगा लफ्ज। कुरान में जहां जहां तज़किये का लफ्ज या ज़का का लफ्ज आया है वहां आप ये मफहूम रख के देखें बिल्कुल हर जगह एक फिट बैठेगा। लेकिन जब आप इसे 2.5 रुपए अदा करना कहते हैं तो ये फिर शरई अहकामात में आ गया। कुरान की जो बातनी मफाहीम है वो आपको आपकी क्या कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ माइल कर रहे हैं, उस तरफ रागिब कर रहे हैं, उस तरफ आपको मतवजो किया जा रहा है। ठीक हो गया
जी, शुक्रिया
जी। और कोई,
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम
जी। सर ये अल्हाम और वही ये अलग अलग दोनों?
जी हाँ, देखिए फलहामहा फजूरहा व तकवाहा, ये कुरान की आयत है या नहीं? वही को हमने, वही असल में वो मैसेज है जो अल्लाह रब्बे करीम बराह रास्त किसी बंदे को देता है। अब चूंकि हमारे यहां ये बात वाजे तौर पे तय है कि भाई ये अंबिया कराम के लिए, यानी जो नबी अकरम हजूर अलैहिस्सलाम ने जो वही उनपे आई उन्होंने वो रिकॉर्ड करवा दी, तो कुरान क्या हुआ, वही हुआ या ना हुआ? अब कुरान में जो अल्लाह की तरफ से बात हजूर अलैहिस्सलाम पे मुनकशिफ की गई वो है वही। उस वही को समझने के लिए आपको इल्हाम की तर्जों से ऊपर उठना है। अभी तो हम शऊर में फंसे हुए, जब हम अपने शऊर से ऊपर राइज करेंगे तो हमें इल्हाम समझ आएगा, अल्लाह की ये बात समझ आएगी कि अल्लाह रब्बे करीम ने इल्हाम का क्या निजाम बनाया हुआ है, किस तरह से इंस्पायरेशंस का अमल होता है और किस तरह। मैंने कई दफा ये बात अर्ज की है कि अल्लाह रब्बे करीम आपके जहन में सवाल डालते हैं तो मेरे जहन में जवाब कौन डालता है, वो भी अल्लाह ही डालता है। और जब आप मेरा जवाब सुनते हैं तो आपको अपने अंदर कोई तमानियत का एहसास होता है, ऐसे लगता है जैसे वाकई सवाल का जवाब मिल गया, तो आपकी जात तमानियत महसूस करती है मुझे वो जवाब दे के जिसमें आप कहते हैं हाँ जी अब समझ आ गया, तो मुझे जो राहत मिलती है वो मेरा हिस्सा है। गोया सवाल भी अल्लाह ने डाला, जवाब भी अल्लाह ने सुझाया, खुश कौन हुआ? जात, आपकी जात, मेरी जात, या जब अल्लाह रब्बे करीम देखते हैं कि भाई इन्होंने मेरे दिए हुए सवाल को खोजने के लिए एक बंदे से बात की और उसने सही बात बताई, तो अल्लाह भी खुश हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरा जवाब गुमराह कुन होगा और आपको मैं अपनी तरफ माहिल करने के चक्कर में पड़ जाऊंगा या आपसे कुछ तवक्को वाबस्ता कर लूंगा तो क्या हो गया, अल्लाह मियां नाराज हो गए कि ये क्या कर रहा है, कलाम मेरा पढ़वा रहा है और बातें अपनी डाल रहा है। मैं क्या अर्ज करता हूं कि अल्लाह की बात को उस तरह समझो जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है, वो आपने खुद समझना है, समझाना अल्लाह ने। बैन ही ये किताब लौह कलम जो है ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने तहरीर करवाई हजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से। जाहिर है कि इसमें हमारे जहन को थोड़ा डिफरेंटली ग्रो करवाया जा रहा है। क्या ग्रोथ है? आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये सारा कारखाना कुदरत हवासों की वजह से है या हवास की मदद से इसको समझा जाता है, हिस्सियात एहसास उसकी बातें हो रही हैं। बताया कि उसके दो हिस्से हैं, एक दाखिली और एक खारजी। बिल्कुल जैसे किसी को मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है तो उसको बताया जाता है कि ये लीवर क्या है, ये पेचकस क्या है और ये प्लास क्या है। इसी तरह आपको कारखाना कुदरत में जो भी निजाम काम कर रहा है, यानी आपका जिस्मानी निजाम कारखाना कुदरत का हिस्सा है या नहीं है, आपके हिस्सियात और हवास सारे इस कारखाना कुदरत का हिस्सा हैं या नहीं, तो इन्हीं के बारे में आपको आगाह किया जा रहा है। इसलिए आप इसको इसी तरह समझेंगे तो बड़े मतलब जहन इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुलेगा। ठीक हो गया?
सर मेरा एक सवाल है।
इरशाद,
सलात से मेरे जहन में आया कि इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी कनकनाती और बदली मिट्टी से पैदा किया, ये क्या इंसान की तीन हालतें हैं?
नहीं, बजनी मिट्टी जब कहा तो असल में बताया कि ये खिला है। बजता क्या है? अब घड़े पे आप बाहर से ऐसे टक टक करें तो क्या होगा, घड़े में गुंजार पैदा होगी या नहीं, जो उसके अंदर के खिला की वजह से, खाली जगह की वजह से, हाँ या नहीं? जहां कहा ये तीन, कीचड़, गिलाजत, ये तीन का लफ्ज किसने बोला? ठीक है, ये इबलीस ने बोला कि आपने इसे कीचड़ से बनाया, यानी के कीचड़ में गिलाजत है, ये असफल दर्जा है, असफल सबसे निचला दर्जा है। किस चीज का? देखे ना, इंसान की रूह वजूद में आई, अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता होने के नाते जब उसमें रूह डाली गई और रूहों ने अपने मौजूद होने को बस महसूस किया कि हम हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, कोई पता नहीं, तो अल्लाह ने उनको एड्रेस किया लस्तो बे रब्बे को, यानी उनको हवास अता किए, उनको सुनने की हिस जगा दी उनके अंदर, उनके अंदर सोचने समझने की तजस्सस की हिसियात पैदा हो गई, उन्होंने फिर देखा यानी देखने की बसारत भी पैदा हो गई, फिर तोला जांचा, फिर समझा, फिर कहा कालू, कहा उन्होंने कहा क्या बला, क्यों नहीं, बेशक आप हैं। ये सारी बात क्या हुई, आपका सवाल क्या था? अब देखें रूह का, वहां तो सड़ी हुई मट्टी नहीं है, ये मैंने अर्ज किया कि हम 17 स्टेशन 17 शोबे हैं अल्लाह के इस कारखाना है कुदरत के, सबसे गंदा सड़ा हुआ शोबा जो है वो ये 3 का है, यानी मट्टी और कीचड़ का, यहाँ पे मादी मजहर बने, क्योंकि हम जन्नत में नाफरमानी के मुर्तकिब हुए, वो सारा इल्म हमसे हाफजे से उतर गया। अब हमें अगर वो इल्म वापस हासिल कर लें, जो कि कुरान ने बताया कि भी कुन कहने के नतीजे में आप बने, कुन कब कहा गया, आज से लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, या अरबों साल पहले, या खरबों साल पहले, कोई इतला ही नहीं है। अब ये अरबों खरबों सालों के मुकाबले में ये मेरी और आपकी ये 50 और 100 साल की जिंदगी जो है ये हीन हीन खिला, ये क्या माने रखती है, इसकी क्या औकात है, क्या वक्त है, क्या कदरों कीमत होनी चाहिए, लेकिन हम इसी को सब कुछ माने बैठे। वो जो लाखों साल की जिंदगी गुजार के आए हैं हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, और जो वापसी पे हमने गुजारनी है हम उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो जहन खुलेगा जब आपको इतना शऊर होगा कि मैं अजल में अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ और अबद तक रहना है मुझको, तो ये दरमियानी फासले सारे क्या हुए, सफर हुआ या ना हुआ।
वापसी का सफर,
वापसी का, देखें माँ के पेट से बच्चा निकलता है सीधा कब्र की तरफ जा रहा है, 100 साल बाद जाए या अगले दिन चला जाए जाना तो उसने कब्र में ही है, हाँ या नहीं। लेकिन उसका मादी जिस्म कब्र में जाता है, लेकिन वो तो अगले मराहिल को तय करने के लिए आगे एराफ में चला जाता है, ठीक हो गया। तो ये शऊर पैदा करना, देखे ना अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम सुम्मा रददना हो असफल साफिलीन, क्या कहा, अल्लाह ने तो इसको बेहतरीन कवाम से बनाया है, बेहतरीन कवाम क्या है कि अल्लाह ने अपनी सलाहियतों का अक्स इसमें डाला है, अपनी सलाहियतों का अक्स डाला है, अपनी सिफात का अक्स इसमें डाला हुआ है, लेकिन ये भूला हुआ है, इसलिए अल्लाह ने जहां जहां लफ्ज इंसान इस्तेमाल किया, इंसान का लघवी मतलब है भूला हुआ, निसिया खलका, ये अपनी तख्लीक भूला हुआ है, इसको ये सारा कुछ याद कराना है, तो वो कुरान ने करवाया। अब कुरान को समझने के लिए जो जहन चाहिए, हम अरबी सीखने बैठ जाते हैं, भाई अरबी तो आपने सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि कुरान उसे पढ़ेंगे तो तभी समझ आएगा ना, लेकिन उसको समझने के लिए जो जहन चाहिए वो ये किताब बना रही है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इसका आखिरी जुमला क्या है, किधर मतवजो कर रहे हैं, वो किधर धकेल रहे हैं या हांक रहे हैं क्यों जी, कुरान की तरफ,
नर्व
آخری جملہ کیا ہے؟ اگر ہم وسیع تر اطلاعات حاصل کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ بجز علوم روحانی کے کچھ نہیں ہے، اور علوم روحانی کے لیے ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا. یعنی اس کتاب نے ہمیں شعور سے نکال کر لاشعور سے متعارف کرایا، اور ہمیں الہامی طرزوں سے آشنا کرا کے وحی کو سمجھنے کے قابل بنا دے گی یہ کتاب، اگر ہم اس جذبے سے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی. معاد، دیکھیں قرآن ہمیں تین ٹاپکس پہ بات کرتا ہے. یہ مرشد کریم نے بتایا کہ قرآن کے اگر ہم اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیں تو پہلا ہے معاشرت، یعنی معاشرے میں کیسے رہنا ہے. وہ ساری طرزیں شریعت کہلاتی ہیں. دوسرا ہے ہسٹری، یعنی ماضی میں کیا کچھ ہو چکا، یعنی ہیومن تھاٹ، فکر انسانی نے کس طرح ترقی کی. آدم کے درجے پہ کیا تھا کہ آدم سمپل لاجک نہیں ایکسرسائز کر سکے. جب شیطان نے بہکایا اور لالچ دیا جاویدانی کا، تو آدم سے کیا کوتاہی ہوئی؟ آدم فیل ٹو ایکسرسائز سمپل لاجک کہ جاویدانی مجھے میرے خالق نے دینی ہے، اس درخت کے خالق نے دینی ہے یا درخت نے دینی ہے. آدم نے نہیں سوچا، یعنی یہ شعور انسانی اتنا معصوم تھا. رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم کے دور تک آتے آتے کیا ہوا؟ شعور انسانی اتنا بالغ ہو گیا کہ اس نے لاجیکل تھنکنگ کی. اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ لاجیکلی سمجھایا کہ یہ بت نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی تخریب کر سکتے ہیں، نہ یہ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، تو نہ ان سے کوئی توقع رکھو. بتوں کو توڑ کے کیا ثابت کیا؟ کہ یہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. اب یہ تھنکنگ کیا ہے؟ لاجیکل تھنکنگ. جب انہوں نے سورج دیکھا، اسے چاند ستارہ دیکھا، وہ غروب ہو گیا، کہا یہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ رب تو ہر وقت میرے ساتھ ہے. انہیں وجدانی طور پہ اتنا پتا تھا. پھر چاند کو دیکھا، سمجھے کہ یہ میرا رب ہے. تو یہ لاجیکل تھنکنگ بتائی گئی ہے، یہ ہے تاریخ. اب ماد کیا ہے؟ ماد یہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے اور جہاں ہم نے جانا ہے، اس سارے قصے کا پورا احوال جاننا ماد کہلاتا ہے. اور قرآن کی آیات ہمیں جب کہتی ہیں کہ یہ جو اعمال تم کر رہے ہو اس کے یہ نتائج نکلیں گے، تمہارے پہ یہ کیفیتیں بیتیں گی، اور تم دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح کن کہنے کے نتیجے میں بنے، اور اس کے بعد کالو بلا کہا، اور پھر نفخت فیہ من روحی ہوا، تمہارے اندر اللہ نے اپنی صلاحیتیں پھونکی، پھر تمہیں علم الاسماء عطا کیا گیا، پھر تمہیں کہا جنت میں رہو اپنے زوج کے ہمراہ، اور اس سے پہلے ملائکہ نے سجدہ کیا، بلکہ ساری کائنات نے سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا. جنات میں سے ایک فرد نے انکار کیا، سب نے نہیں. اس کے بعد یہ جو ساری باتیں یہ ماد کہلاتی ہیں، یعنی کہ غیب کی باتیں ہیں. یہ جن سٹیشن سے ہم گزر کر آئے ہیں اور جن سے ہم نے گزرنا ہے، ان کی بابت جو اطلاعات ہیں ان کو ماد کہا جاتا ہے. تو ماد کیا ہوا؟ دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی اور دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی. دیکھیں زندگی قائم ہے. ہمارا انتقال کرنے کا مطلب ہے ہم منتقل ہوئے ایک زون سے دوسرے زون میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے زون، کرتے کرتے ہم نویں زون میں آئے ہیں. باقی آٹھ زون پار کر کے ہم نے اوپر واپس اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ جانا ہے. اسے ابد الآباد کہتے ہیں. یہ سب ماد کا چیپٹر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ काफी है? क्यों जी, काफी है?
सर मेरा एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा।
इरशाद,
इल्हाम जो है वो तो सर, इल्हाम तो किसी पे भी हो सकता है, होता है कि मतलब
जी हाँ
जाता है किसी वक्त के, और वही के बारे में कुरान पाक में भी है कि शहद की मक्खी पे भी अल्लाह ने वही उतारी। लेकिन हमारे माशरे में यही था कि वही सिर्फ अंबिया पे उतरती है,
बेशक।
तो क्या आम इंसान पे, आम इंसान पे भी हो?
अगर वो आम इंसान नबियों वाली तर्ज फिक्र अपना ले, क्या कहा?
नबियों वाली तर्ज फिक्र,
अगर नबी की तर्ज फिक्र से वो आरास्ता हो जाएगा तो अल्लाह क्यों नहीं उतारेगा वही? नहीं, असल में ये नहीं है कि अल्लाह ने वही उतारनी है, बात है कि आपको वही की समझ आने लगेगी। जब हम अंबिया कराम की तर्ज फिक्र से आरास्ता हो जाएंगे तो क्या होगा, हम वही को समझने के काबिल हो जाएंगे। वही जो है वो कुरान की सूरत में आपके पास सामने रिकॉर्ड पड़ा है, अभी नहीं समझ आ रही। अब मिसाल देता हूं, अल्लाह हो नूर समावाते वल अर्थ, इसका तर्जमा क्या हमने किया हुआ है कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, यही तर्जमा आपने पढ़ा है ना
जी सर।
हालांकि इसका मतलब कभी जरा सा गौर करें कि क्या जमीन और आसमान जो हैं उनकी रोशनी से अल्लाह बना है, या अल्लाह के जहन की ख्याल की ताकत से ये जमीन और आसमान बने?
आपको अल्लाह की ताकत,
हाँ, अल्लाह हो नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान की का नूर है, ये तर्जमा हम हमेशा पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये असल में बात ये क्या कहा क्या गया है कि ये जमीन और आसमान अल्लाह का नूर है, अल्लाह का ख्याल है, अल्लाह के ख्याल के नतीजे में ये चीजें मजहर बनी हैं, वजूद में आई हैं। अब वहां क्या बताया गया, ये है जब आप शऊर में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि जमीन और आसमान अल्लाह का नूर है, या सॉरी अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है, अल्लाह हो नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है, ये तर्जमा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये है शऊर। लेकिन जब आप वही की तर्जों में, इल्हाम की तर्जों में इस पे गौर करेंगे तो क्या सोच देखेंगे कि ये बात तो जायज नहीं है, ये तो उल्टी बात कही गई है, इसलिए कि हम उल्टे लटके हुए ना। वो मकतूबे ग्रामी में हजूर कलंदर बाब औलिया ने क्या कहा? अच्छा, दूसरा ये सूरह शुरा की आयत नंबर 51 है, क्या? वह मा काना ले बशरिन आई युकल्ले मोहल्ला हो, यानी किसी बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह उसे कलाम करे, इल्ला सिवाय इसके वहीन के उस पर वही करे, और मिम वराय हिजाब और यरसला रसूलन, क्या कि या उस पर वही करे, यानी उसके अपना ख्याल उसको इंस्पायर करे, या किसी हिजाब यानी पर्दे के पीछे से बात करे, या अपना कोई रसूल उसके पास भेजे। अब रसूल क्या कर रहे, अल्लाह की बात यानी कि कलाम, अल्लाह का कलाम क्या हुआ, वही। अगर डायरेक्ट हो जाए तो वो वही कहलाएगा। जब आपको कुरान बराह रास्त मतलब तर्जमों के बगैर खुद से समझ आएगा, मैं क्या अर्ज करता हूं, कुरान को समझना मैंने और आपने खुद है, समझाना अल्लाह ने, ये अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए। हम खुद समझना नहीं चाहते, हम एक दूसरे की समझ की जुगाली करते, नतीजा अल्लाह कहता है ठीक है फिर उसी का समझाया हुआ समझ लो, मैं क्या समझाऊं तुम्हें। लेकिन जब हम सचमुच खलूस से अल्लाह की बात को खुद समझने पे कमर बस्ता हो जाते हैं, कमर कस लेते हैं, क्या होता है, फिर अल्लाह खुद समझाता है। क्यों? क्योंकि आपका अकीम व सलात यानी अल्लाह से रब्त और ताल्लुक कायम हो जाता है, और उस रब्त और ताल्लुक के नतीजे में आपके जहन की ग्रोथ होती है। ठीक हो गया जी? मैंने अर्ज किया कि आप कोई भी तर्जमा पढ़ें, गौर करके पढ़ेंगे कि क्या ये तर्जमा असल मफहूम की तरफ रहनुमाई करता है या नहीं करता। मसलन देखें ना, आपके तमाम तराजम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब लिखा हुआ है, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैंने क्या अर्ज किया कि आप खुद क्यों नहीं गौर करते, ये पांच तो लफ्ज हैं, बे इसमें अल्लाह, अल्लाह के नाम पे जो रहमान है और रहीम है। अब रहमान और रहीम के लफ्ज पे गौर करें तो इनका मादा रहम है, तो रहमान का मतलब आप रहम बनाने वाला क्यों नहीं लेते, और रहीम का मतलब रहम को चलाने वाला क्यों नहीं लेते, या रहम में बनाने वाला क्यों नहीं लेते। जब हम इस तरह से खुद डिसाइफर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहली आयत जो है वो ये बता रही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अल्लाह वास्ते कर रहा हूं, क्योंकि वो तख्लीकी निजाम को बनाने और उसको चलाने वाला है। अब ये फर्क समझ आ गया आपको? तो तर्जुमे में तो आपको मैं कहूं कि वो फलां तर्जुमा, तो वहां तो हर तर्जुमे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का यही तर्जुमा लिखा हुआ है। क्या किसी ने कहा कि शुरू अल्लाह के नाम से, किसी ने कहा मैं शुरू करता हूं, बस इतना फर्क है। किसी ने मैं डाली है, किसी ने मैं निकाली है लेकिन बात तो असल बात को तो गोल करके सारे मेहरबान कर दिया, रहमान का तर्जुमा और रहीम का तर्जुमा रहम करने वाला। रहम करना उर्दू में मतलब किया जाता है, अरबी में तो रहम होता है और वो तख्लीकी। जी जाहिर है, अब देखे ना जी, अगर अगर आप महबूब की जबान नहीं सीखेंगे तो उसे बातचीत कैसे करेंगे देखे ना, दुनिया में अगर आपकी दोस्ती किसी चाइनीज से हो जाए तो क्या करेंगे आपको कुछ, या वो आपकी जबान में बात करे तो, या आप उसकी जबान में बात करें तभी कम्युनिकेशन होगी ना। तो इतनी सी तो थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। सारे 2000 अल्फाज हैं कुरान के, 2-1.5 हजार अल्फाज समझ आ जाएं तो उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि भी इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है तो किन मानों में किया है, क्यों किया है, वो आपको अल्लाह खुद समझाएगा। बशर्ते के हम सर तो लगाए ना जी, कोशिश तो करें ना। हमें यहाँ आसरों ने मारा हुआ है कि बस प्यार मिल जाए कोई तर्जमा किया हुआ, मुतरजम अपने जहन के मुताबिक तर्जमा करेगा, मुफसर अपने जहन के मुताबिक तफसीर करेगा। इसीलिए तो इतनी तफासीर लिखी गई, किसी रूहानी बंदे ने क्यों नहीं तफसीर लिखी। क्यों क्यों नहीं लिखी? इसलिए कि अल्लाह ने हर बंदे पे कुरान को खुद समझना वाजिब नहीं, फर्ज किया है। जब मैं अल्लाह का नायब बनना चाहूं तो मुझे अल्लाह की बोली आनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह की बात समझ आनी चाहिए कि नहीं?
आनी चाहिए।
हमारे पास फुर्सत ही नहीं है अल्लाह की बात समझने के लिए, हम फारिग ही नहीं है ठीक हो गया जी?
जी, बहुत शुक्रिया।
चलें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।